पाठ 33, अध्याय 36 और 37। हालांकि यह अध्याय मुख्य रूप से वंशावली सूची है, लेकिन इससे जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा सीखने का मिलता है। हम आदिवासी समाज के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं और कैसे परिवार आपस में मिलत जुलते थे, और यहां तक कि उस युग की राजनीति के बारे में भी। इसलिए जबकि यह मानसिक रूप से शांत होने का एक अच्छा समय लग सकता है, मैं सुझाव दूंगा कि यह उन समयों में से एक हो सकता है जब आप थोड़ा और कैफीन लें और ध्यान दें और बहुत सारे नोट्स लेने का समय हो सकता है। ये आपको आगे चलकर काफी मदद करेगा। उत्पत्ति 36 पूरा पर है। इसे ऐसाव की पीढ़ियां कहा जाता है, और पुराने नियम में इस बिंदु पर हम कह सकते हैं कि कुलपिताओं का व्यक्तिगत इतिहास समाप्त हो जाता है और इसराइल का इतिहास 12 जनजातियां इस अध्याय के बाद शुरू होती है। आइए याद रखें कि जब भी हम यहूदी या ईसाई विद्वानों को बाइबल के कुलपति के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, या बाइबल में कुलपिता या पिता शब्द का उपयोग किया जाता है, तो यह केवल अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में बात कर रहा है। यहां हम आसानी से देख सकते हैं कि एसाव के कई बच्चे थे, और यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एसाव और एदोम एक ही व्यक्ति हैं। बी कि एसाव याकूब का भाई, सभी एदोमी जनजातियों का संस्थापक है। सी वह एदोम की भूमि का नाम है। डी कि माउंट सेयर एदोम की भूमि में है, और शब्द सेयर एक दूसरे के स्थान पर है। यानी जब हम बाइबल में सेयर की भूमि या माउंट सेयर या एदोम के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, तो यह सब मूल रूप से एक ही स्थान है,
और वह स्थान मृत सागर के दक्षिण पूर्वी छोर पर है।
इन लंबी वंशावली सूची का एक उद्देश्य हमें यह दिखाना है कि इसहाक के अपने जुड़वां बेटों एसाव और याकूब पर भविष्य सूचक आशीर्वाद घटित हो चुके थे या होने वाले थे। आइए उत्पत्ति अध्याय 27 आयत 38 से 40 के इस आशीर्वाद की समीक्षा करें।
उत्पत्ति 27:38, एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरा एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे। तब एसाव ऊंचे स्वर में रोने लगा।
39
तब उसके पिता इसहाक ने उत्तर दिया, सुन, तेरा निवास भूमि की उपजाऊ भूमि से दूर और आकाश की ओस से दूर रहेगा। 40 और तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहेगा और अपने भाई की सेवा करेगा, परंतु जब तू बेचैन हो जाएगा तब तू उसका जुआ अपनी गर्दन से तोड़ डालेगा।
आपकी ज्यादातर बाइबलें धरती की उर्वरता से दूर नहीं कहेंगी, बल्कि इसके बजाय वे दूर शब्द को छोड़ देती हैं, जिससे यह पता चलता है कि ऐसा उपजाऊ जगह पर रहेगा जहां भरपूर नमी है। यहूदी और इब्रानी विद्वानों को यह लंबे समय से पता है कि यह रब्बी परंपरा थी कि दूर शब्द को पाठ से हटा दिया गया था, जो एसाव के लिए सहानुभूति और समझ दिखाता है, और उसे उसके जन्मसिद्ध अधिकार और आशीर्वाद से वंचित किया गया था। लेकिन वास्तव में सबसे पुरानी इब्रानी पनाडुलिपियां स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि यह उर्वरता और नमी से दूर था जहां एसाव रहता था, और बेशक यही वह जगह है जहां एसाव गया था। अरबाह के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में एक रेगिस्तान था। यह अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि एसाव ने अपने अपवित्र तरीकों को जारी रखा, जिसे परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान में जाना था। इसलिए उसने एसाव के जन्म सिद्ध अधिकार को छीन लिया और उसे उसके जन्म से पहले ही वादे की पंक्ति से हटा दिया। यहां से बाइबल, पुराना नियम और नया नियम में एसाव और एदोम को आम तौर पर प्रतीकात्मक रूप से अधर्म और विद्रोह के साथ जो राज आता है, और यह और भी अधिक हो जाता है क्योंकि हम तोरह को छोड़कर पुराना नियम की बात की पुस्तकों में जाते हैं, फिर भी एसाव को कुछ सम्मान दिया जाता है क्योंकि व्यवस्था विवरण 23 में मूसा ने इस्राएलियों को आदेश दिया कि वे एदोमी से घृणा न करें, और एदोमी एसाव का वंशज है क्योंकि वे इसराइल के रिश्तेदार हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से बाइबल में एसाव की लगभग एक विखंडित स्मृति है, एक बार उसे अधर्मी और दृष्टों के साथ जोड़ते हुए और साथ ही इसराइल को याद दिलाते हुए कि एसाव के वंशज रिश्तेदार हैं, और इसलिए इसराइल को एसाव और उसके वंशजों से घृण नहीं करनी चाहिए। पश्चिमी दिमाग के लिए इस तरह के तर्क को समझना काफी मुश्किल है,
क्योंकि हम पारिवारिक रिश्तों को ज्यादा यूरोपीय विस्तारित और परमाणु परिवार के नजरिए से देखते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पूरी बाइबल मध्य पूर्वी कबीलाई दृष्टिकोण से पारिवारिक रिश्तों के बारे में बात करती है। मैं इसे फिर से कहना चाहता हूं, उत्पत्ति 1 से प्रकाशित वाक्य 21 तक बाइबल में परिवार और राष्ट्र का संदर्भ कबीलाई है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम अपने आधुनिक पश्चिमी विचारों और सामाजिक संरचनाओं को पुराना नियम या नया नियम शास्त्रों की अपनी समझ में बदलें।
मध्य पूर्व के समाचारों में जो दिन के 24 घंटे हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर छाए रहते हैं, हम इन निराशाजनक वास्तविकताओं को देखते हैं जिसमें सुन्नी मुसलमान शिया मुस्लिम मस्जिदों को उड़ा देंगे
और इसके विपरीत और कुछ शिया अन्य शियाओं को मार देंगे और कुछ सुन्नी अन्य सुन्नियों को मार देंगे और ईरान के शियाओं के खिलाफ युद्ध करेंगे इत्यादि। और फिर भी जब अमेरिका इस भयावहता को रोकने के लिए एक की सहायता के लिए आता है तो दूसरा अचानक अमेरिका पर हमला कर देता है और दोनों युद्धरत गुटों के बीच भाईचारे का दावा करता है। अफगानिस्तान में हालांकि वहां से आने वाली खबरें रडार स्क्रीन पर मुश्किल से ही आती हैं, लेकिन वर्तमान में हम लगातार एक युद्ध सरदार के दूसरे के खिलाफ लड़ने अमेरिका के किसी और के साथ खड़े होने की बात सुनते हैं और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है और अमेरिका खुद को ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ता हुआ पाता है जो कल तक सहयोगी के तौर पर लड़ते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये युद्ध सरदार सिर्फ आदिवासी नेता हैं जो हमेशा से वही करते आए हैं, प्रभुत्व हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी आदिवासी नेता का प्राथमिक काम होता है। मुझे याद है कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ पहले युद्ध में, बड़े राष्ट्रपति बुश के युद्ध में, विभिन्न अरब देशों के प्रतिनिधियों को यह कहते हुए सुना था कि वे सद्दाम के खिलाफ नहीं जाना चाहते क्योंकि कुवैत पर उनका आक्रमण भी केवल बुरा व्यवहार था, ऐसा कुछ जो निंदा के योग्य था लेकिन विनाश के योग्य नहीं था। उन्होंने उसे एक भाई के रूप में देखा जो गलत व्यवहार कर रहा था, अपने परिवार के लिए परेशानी का कारण बना, न कि एक क्रूर तानाशाह के रूप में जा दुनिया की स्थिरता को खतरा बन रहा था। और भले ही ये लोग एक दूसरे पर निर्दयतापूर्वक हमला करेंगे और एक दूसरे को मार डालेंगे, लेकिन अंत में यह उनके दिमाग में आदिवासी वर्चस्व के लिए एक पुरानी लड़ाई है। यह सामान्य है, इसे रोका और बदला नहीं जा सकता। यह जीवन का एक प्राचीन तरीका है जो अनादिकाल से अस्तित्व में है और यह शायद बहुमत के लिए एक पसंदीदा तरीका है, लेकिन निश्चित रूप से इन मध्य पूर्वी लोगों और राष्ट्रों के नेतृत्व के लिए।
यही कारण है कि ये मध्य पूर्वी राष्ट्र जो एक दूसरे से पूरी तरह से नफरत करते हैं, यहां तक कि एक दूसरे पर नरसंहार भी करते हैं, वे अमेरिका और यूरोप के खिलाफ लड़ाई में योगदान देंगे क्योंकि वे खुद को ऐसाव और इश्माइल जनजातियों के विस्तार के रूप में देखते हैं और इसलिए परिवार के रूप में। यह वह मानसिकता है जिसका हम पूरे बाइबल में सामना करते हैं। ऐसाव एक बुरा लड़का है, इश्माइल चुना हुआ नहीं है, लेकिन बड़े कबीलाई अर्थ में इज़राइल का दूर का रिश्तेदार है। लेकिन और भी करीब से देखने पर हम एक विडंबनापूर्ण स्थिति पाते हैं। एसाव के सभी पुत्र प्रतिज्ञा देश के बाहर पैदा हुए थे। एसाव के बेटे कनान में पैदा हुए, याकूब के बेटे मेसोपोटामिया में पैदा हुए। फिर भी अपने पूरे चरित्र को प्रकट करते हुए एसाव ने अपने परिवार को ले जाकर उन्हें वादा किए गए देश की आशीष से दूर कर दिया, जबकि याकूब ने अपने परिवार को ले जाकर उन्हें वादा किए गए देश की आशीष में पहुंचाया। वाह, यहां हमारे पास कितनी अविश्वसनीय प्रतीकात्मकता है। उन लोगों का कितना भयानक भाग्य इंतजार कर रहा है जिनके परिवार के लोग परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन परिवार का नेता उन्हें हटा देता है। और परिवार के नेता के लिए भी यह कितना बढ़िया आशीर्वाद है जो अपने परिवार को, जो परमेश्वर के आशीर्वाद से बाहर है, ले जाता है, लेकिन उन्हें परमेश्वर के आशीर्वाद में ले जाता है। इस विडंबना को और बताते हुए, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि परमेश्वर की महान योजना में इज़राइल के लोग याकूब परमेश्वर के वादों में पैदा हुए थे और उन्हें परमेश्वर के वादों में पैदा हुए थे और उन्हें परमेश्वर के सभी वादों का उत्तराधिकारी होना था, फिर भी उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और ऐसा कहा जा सकता है कि वे इससे दूर चले गए। उसी समय गैर यहूदी जो वादों से बाहर पैदा हुए थे और गैर उत्तराधिकारी के रूप में पैदा हुए थे, उन्हें यीशु के माध्यम से वादा किए गए देश में जाने और इसराइल के साथ सह उत्तराधिकारी बनने का अवसर दिया गया। यह फिर से एसाव और याकूब है और जैसा कि मैंने आपको उत्पत्ति एक से सिखाया है, ये एक ईश्वर प्रतिरूप है और जब परमेश्वर एक प्रतिरूप स्थापित करता है तो वह उस पर कायम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उत्पत्ति 36 में एसाव के कई बेटों, पोतों, परपोतों के बारे में देखते हैं और निश्चित रूप से इनका उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने अपना स्वयं का नामित कबीला बनाया होगा। उनमें से कुछ नाम हम बाद में पुराने नियम में देखेंगे, खासकर मिस्र से पलायन के दौरान और उसके बाद। लेकिन पद 38 और 39 में एक बात पर ध्यान दें, एसाव का एक वंशज बाल हनान नाम का एक व्यक्ति है। यह एसाव और उसके वंशजों द्वारा किए गए विद्रोह और मूर्ति पूजा का एक और ठोस सबूत है क्योंकि अनादि काल से मध्य पूर्व की जनजातियों में अपने परिवार के नाम के हिस्से के रूप में अपने मुख्य देवता के नाम को अपनाने की प्रथा रही है। यहां हम परिचित नाम बाल देखते हैं जो अब देवता माने जाने वाले निमरोद के लिए एक कनानी शब्द है जो एसाव की संतानों में से एक से जुड़ा हुआ है यह बेटा। और मुझे यकीन है कि कई अन्य बाल उपासक थे और इस पर गर्व करते थे।
लेकिन जब हम इस वंशावली चार्ट का विश्लेषण करते हैं तो हमें कुछ अन्य बातें पता चलती हैं जो उपयोगी हैं। सबसे पहले मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो बाइबल के ग्रंथों का एक तेज छात्र समझ सकता है। उत्पत्ति 26 में सूचीबद्ध एसाव के वंशज और पत्नियां यहां दिए गए लोगों से बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं और विद्वानों ने इस पर और विभिन्न निष्कर्षों पर संघर्ष किया है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 26 में एसाव की तीन पत्नियां सूचीबद्ध हैं, यहूदीत, बाशमत और महल्लत। यहां उत्पत्ति 36 में पत्नियों को आदा, बाशमत और ओहोलीबाम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दोनों अध्यायों के बीच एकमात्र सहमति बासमत है, लेकिन फिर भी उसे एक अलग पिता सौंपा गया है। वह उत्पत्ति 26 में एलोन हित्ती की बेटी है, लेकिन वह उत्पत्ति 36 में इश्माएल की बेटी है। जाहिर है कि हमारे पास दो अलग अलग दृष्टिकोणों से पारिवारिक वंशावली का प्रतिपादन है। जैसे जैसे विद्वान यूरोपीय पश्चिमी मानसिकता से बाइबल को देखने की कोशिश करना बंद कर रहे हैं और इसे वैसा ही देखना शुरू कर रहे हैं जैसा कि यह है एक मध्य पूर्वी आदिवासी सेमिटिक इब्रानी दस्तावेज, इनमें से कुछ मुद्दे स्पष्ट होने लगे। उदाहरण के लिए जब हम अलग अलग सुसमाचारों में हमारे उद्धारकर्ता की नया नियम वंशावली को देखते हैं तो हमें थोड़ी अलग वंश वृक्ष सूची मिलेगी, लेकिन जैसा कि अब जाना और समझा जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मध्य पूर्वी और इब्रानी तरीका था जिसमें शुद्ध वंशावली और ज्येष्ठ पुत्रों के आधार पर वंश वृक्ष की रचना की जाती थी जब रक्त रेखाएं मायने रखती थीं और थोड़ी अलग वंशावली सूची में कबीले के नेताओं और राजाओं पर जोर दिया जाता था। ये एक दूसरे के साथ संघर्ष में नहीं है, यह वास्तव में सिर्फ परिवार वृक्ष सूची के उद्देश्य का मामला है।
बहुत संभव है कि एसाव की पत्नियों की इन दो अलग अलग सूचियों के साथ दो चीजों में से एक हो रही हो, या तो कुछ पत्नियां दो अलग अलग नामों से जानी जाती थीं, जो इस बात पर निर्भर करता था कि वे उस समय कहां रह रही थीं, उस युग में एक सामान्य बात, या ये सभी एसाव की पत्नियां थीं, बस यह था कि पहली सूची एक उद्देश्य के लिए थी और दूसरी एक अलग उद्देश्य के लिए थी।
एक और प्रभाव जो अक्सर वंशावली सूची में भिन्नता का कारण बनता है वह है जब दो प्रमुख परिवार समूह आपस में विवाह करना शुरू करते हैं और इसलिए समय के साथ रेखाएं धमुधली हो जाती हैं। हमारे युग में जहां तलाक आम बात है, ये सामान्य है कि साथ रहने वाले भाई बहन के अलग अलग उपनाम होंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे समाज में एक महिला अपने वर्तमान पति से मेल खाने के लिए अपना उपनाम बदल लेती है। माँ का उपनाम उसके अपने बच्चे के नाम से अलग होगा, लेकिन माँ का उपनाम उसके बच्चे के उपनाम से मेल खाता है या नहीं, यह इस बात पर आधारित है कि उसका नाम कब और किस उद्देश्य से लिखा गया था। अगर उसका नाम लिखे जाने के समय वह अभी भी अपने बच्चे के पिता से विवाहित थी तो उसका और उसके बच्चों का उपनाम मेल खाएगा।
बाद में अगर महिला तलाक लेकर दोबारा शादी कर लेती है और फिर उसका नाम लिख दिया जाता है तो उसका अंतिम नाम शायद उसके बच्चों के नाम से मेल नहीं खाएगा। और फिर बेशक ऐसा मामला भी हो सकता है जहां जैविक पिता नए सौतेले पिता के गोद लेने की अनुमति देने के लिए सहमत हो जाए, इसलिए बच्चे का अंतिम नाम बदल दिया जाता है और इसी तरह चलता रहता है।
इसलिए जबकि हम अपने समाज के लिए यह सब सच समझते हैं और इसलिए इस बारे में नहीं सोचते कि एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग दस्तावेजों में त्रुटि या विवाद के रूप में कैसे दिखाई दे सकता है, बाइबिल युग में समाजों ने नाम परिवर्तन के संबंध में इसी तरह की चीजें की, लेकिन अलग अलग कारणों से। इसलिए बाइबिल में हमें अक्सर जन्म, मृत्यु, विधवा द्वारा किसी अन्य राष्ट्रीयता के पति से विवाह करने, परिवार के दूसरे देश में स्थानांतरित होने और लोगों के नामकरण के लिए स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाने, परिवार द्वारा एक ईश्वर के प्रति निष्ठा छोड़ने और एक नए ईश्वर के प्रति निष्ठा शुरू करने आदि के कारण नामों के अतिवादी और नाम परिवर्तन की यह गड़बड़ी मिलती है। इस सब से हमें जो बात ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि इश्माएल अब्राहम का पुत्र और एसाव इसहाक का पुत्र याकूब का जुड़वां भाई के वंशजों के बीच विवाह के माध्यम से बहुत अधिक मेलजोल हो रहा है। यह बहुत पहले शुरू हुआ और तेजी से बढ़ता गया। यह प्रत्येक जनजाति के कुछ कुलों के साथ अधिक हुआ और दूसरों के साथ कम। इसका परिणाम यह है कि जब तक नया नियम के समय तक पहुंचते हैं तब तक मेल जोल बहुत अधिक हो चुका है और ऐसे व्यक्ति के बीच अंतर करना मुश्किल है जो एसाव को अपना पूर्वज कहता है और जो इश्माएल का अपना पूर्वज कहता है। यूसुफ के दिनों में जैसा कि अब है एक सच्चा अरब यानी एक अरब वासी, न कि केवल एक व्यक्ति जो बोलता है।
कई अरबी बोलियों में से एक आम तौर पर इश्माएल का वंशज है और अधिकांश अन्य मध्य पूर्वी जनजातियां एसाव और इश्माएल का मिश्रण है। मुख्य अपवाद उत्तरी मध्य पूर्वी क्षेत्रों के हैं जिनमें अधिक फारसी खून है।
आगे बढ़ने से पहले हमें जिस अंतिम बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि हम अमालेक का नाम देखते हैं। अमालेक इसराइल के बहुत ही प्रारंभिक शत्रु के रूप में दिखाई देता है और वास्तव में निर्गमन में अमालेक जनजाति द्वारा मिस्र छोड़ने के बाद जंगल में इसराइल पर हमला करने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अमालेक तिम्ना उसकी मां की संतान था जो एक होराइट थी। वास्तव में तिम्ना एक कानूनी पत्नी नहीं थी बल्कि एक उपपत्नी थी, इसलिए उसकी एक निम्न स्थिति थी जिसने बदले में अमालेक को कबीलाई सोच के तरीके में एक निम्न स्थिति दी।
तिम्ना एक होराइट एक कनानी जनजाति थी और एलीपज एक एदोमी से विवाह के माध्यम से एदोमी जनजाति में शामिल हो गई
जिससे अमालेक एक एदोमी जनजाति बन गई। लेकिन परिवार के भीतर अधिक निकटता से विवाह करने वाले कुछ अन्य वंशजों से कमतर, इसलिए अमालेक हालांकि तकनीकी रूप से एसाव के वंशज हैं वास्तव में पवित्र शास्त्रों द्वारा कुछ हद तक अलग से व्यवहार किया जाता है। अमालेक को इसराइल का रिश्तेदार नहीं माना जाता जबकि एसाव के अन्य वंशजों को इसराइल का रिश्तेदार माना जाता है। यह वास्तविक वंशावली की तुलना में कहीं अधिक राजनीति और परंपराओं को दर्शाता है और हमें पुराना नियम और नया नियम शास्त्र में इस तरह की बहुत सी चीजें मिलेंगी। यह खोजना और समझना हमारे ऊपर है क्योंकि इब्रानी लेखकों और तोरा और इब्रानी बाइबल के शुरुआती पाठकों ने इन बारीकियों को अच्छी तरह से समझा था जो हमसे छूट गई है। इसलिए कृपया जब हम इन ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय वंशावली संबंधी मामलों पर चर्चा करते हैं तो अपना दिमाग बंद न करें और थोड़ी देर की झपकी न लें। आपके भीतर निवास करने वाली पवित्र आत्मा के बाद ये ही वास्तव में समझने की कुंजी है कि बाइबिल के लेखन का क्या अर्थ और उन्हें आपके जीवन में कैसे लागू किया जाना चाहिए। उत्पत्ति अध्याय 37।
तोरह में इस बिंदु पर उत्पत्ति के सभी शेष अध्याय यूसुफ के इर्द गिर्द घूमेंगे। कुलपिता अब्राहम, इसहाक और याकूब का युग समाप्त होने वाला है, लेकिन यूसुफ और उसके जीवन पर केंद्रित कार्यों के बारे में किसी भी कुलपिता की तुलना में अधिक कहा जाएगा।
यह भी कहा जा सकता है कि तोरह में यह वह बिंदु है जहां इसराइल पहली बार केंद्र बिंदु बन जाता है। इसराइल को अब एक अलग राष्ट्र के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन अध्याय 37 के अनुसार निश्चित रूप से अभी तक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो उत्पत्ति के शेष 13 अध्यायों में यूसुफ सबसे आगे और केंद्र में है, फिर भी यूसुफ को उसके पिता की तरह कुलपिता क्यों नहीं माना जाता? मैं वास्तव में यह नहीं कह सकता कि यह दर्जा याकूब के पास क्यों समाप्त होता है और यूसुफ के पास क्यों नहीं, लेकिन मैं एक उल्लेखनीय तथ्य की ओर इशारा कर सकता हूं जो निश्चित रूप से यहोवा के इब्रानियों के नेता के साथ काम करने के तरीके में एक उल्लेखनीय बदलाव है। परमेश्वर का अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ सीधा और दो तरफा संचार था। उसने अपने निर्देशों को कुलपिताओं को सीधे दिव्य भविष्यवाणी के माध्यम से दिया, लेकिन उसने यूसुफ के साथ ऐसा नहीं किया। सीधा दो तरफा संचार बहुत ही विशेष मामलों के लिए आरक्षित था और यूसुफ उनमें से एक नहीं था। अगले कई अध्यायों में, जो इस पूरी कहानी में शामिल हैं, हम परमेश्वर की एक और शासकीय गतिशीलता पर नजर डालने जा रहे हैं। पहली शासकीय गतिशीलता जिसे हमने पहचाना वह विभाजन, अलगाव और चुनाव की थी, और यह परमेश्वर की मानवता को पूर्ण बनाने और मानव जाति को स्वयं के साथ एकता में लाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और चुनने का कार्य है। पवित्रीकरण मनुष्यों को अपने लिए अलग करना है। परमेश्वर के लिए अलग किए गए व्यक्ति को एक पवित्र दर्जा दिया गया है, एक ऐसा दर्जा जो सामान्य से ऊपर है, सामान्य दुनिया की स्थिति है, पवित्र परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोगों की स्थिति है।
इसराइल को परमेश्वर के लिए अलग रखा गया था, इसलिए वे पवित्र थे, हैं। एक विश्वासी के रूप में आपको पवित्र किया गया है, यानी आपको विभाजित किया गया है, अलग किया गया है और परमेश्वर के लिए चुना गया है, उसकी इच्छा के अनुरूप होने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। आपको पवित्र घोषित किया गया है, लेकिन वास्तव में विश्वासी इसराइल के अलग राष्ट्र के अलग कबीले की तरह हैं, और वह अलग कबीला लेवी था,
क्योंकि हमें नए नियम में बताया गया है कि यीशु में विश्वास करने वाले ही उसके याजक हैं। ईश्वर की यह दूसरी शासन व्यवस्था वह है जिसे हम यूसुफ के साथ व्यवहार करते समय प्रभु को प्रयोग करते हुए देखते हैं, और वह दूसरी शासन व्यवस्था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वह है ईश्वरीय प्रावधान। अर्थात ईश्वर अपनी इच्छा को काफी हद तक हमारे लिए अदृश्य और आज्ञात रूप से पूरा करता है, फिर भी हमारी अज्ञानता में हम वास्तव में इसके भागीदार हैं। किसी तरह हमारी इच्छाओं के स्वतंत्र प्रयोग में ईश्वर मानव जाति को उस लक्ष्य की ओर ले जाता है जिसे उसने अनंत काल में तय किया था। फिर भी अक्सर ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल भी मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि उसने अपनी रचना बनाई है और हमें अपने हाल पर छोड़ दिया है, अपनी रचना को भाग्य के अनुसार कोई भी रास्ता अपनाने की अनुमति दे रहा है।
इसके अलावा कई बार ऐसा लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों का उपयोग करके ईश्वर अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी हमारे जाने बिना ईश्वरीय प्रावधान काम कर रहा है। अपने अपरिहार्य, अपरिवर्तनीय, ईश्वर द्वारा निर्धारित निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है, और जबकि हम इसे कुलपतियों के जीवन में क्रियान्वित होते हुए देख सकते हैं, यद्यपि कभी कभी धुंधले रूप में, यूसुफ की कहानी सकारात्मक रूप से अवलोकनीय ईश्वरीय प्रावधान से जगमगाती है। बेशक हमारे लिए अवलोकनीय है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जो यूसुफ के जीवन की इस अद्भुत यात्रा से जुड़े अन्य सभी पात्रों के पास नहीं था। हमारे पास पीछे देखने का लाभ है, क्योंकि जब वे इस सब के बीच में थे तो वे इसे नहीं देख पाए, ईश्वरीय प्रावधान काम पर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वरीय प्रावधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसे प्रकट होते समय मनुष्य द्वारा शायद ही कभी देखा जा सके। तो अब हमें ईश्वर की दो शासकीय गतिशीलता से परिचित कराया गया है, पवित्रीकरण, विभाजित करने, अलग करने और चुनने की प्रक्रिया। और ईश्वरीय प्रावधान समस्त मानवता में ईश्वर की इच्छा का अदृश्य कार्यान्वयन। ईश्वरीय प्रावधान को ध्यान में रखते हुए आइए अब यूसुफ के जीवन पर नजर डालें।
उत्पत्ति 37 सब पर है। अध्याय 37 की शुरुआत में याकूब के दूसरे सबसे छोटे बेटे यूसुफ की उम्र 17 साल है। वह अपने बाकी भाइयों के साथ कनान में रह रहा है। जल्द ही वह मिस्र में रहने वाला है।
यहां कुछ ऐसा उल्लेख करने का अच्छा समय हो सकता है जो एक अच्छे कैलकुलेटर और थोड़े शोध से प्रकाश में आता है। याद करें कि अध्याय 35 के अंत में याकूब के पिता इसहाक की मृत्यु दर्ज की गई है, और मैंने आपको तब बताया था कि इसहाक वास्तव में अपने सभी पोते पोतियों इसराइल के 12 गोत्रों से मिलने के लिए काफी समय तक जीवित रहा था। खैर, इसहाक भी यूसुफ के लापता होने के बारे में जानने के लिए काफी समय तक जीवित रहा, लेकिन परिणाम जानने के लिए काफी समय तक जीवित नहीं रहा। जैसा कि पवित्र शास्त्रों में असामान्य नहीं है, जो वैसे तो उपन्यास होने के लिए बनावट नहीं किया गया है, कभी कभी कोई कथन बस वहां रखा हुआ होता है और हम मान लेते हैं कि वह कथन जरूरी तौर पर उसके ठीक पहले की पदों से जुड़ रहा हुआ है। वास्तव में अक्सर ऐसा नहीं होता है। उत्पत्ति 35 का 27 में हम पढ़ते हैं कि याकूब हेब्रोन लौटता है और इसहाक को नमस्कार करता है, और अगली पद में हम पढ़ते हैं कि इसहाक की मृत्यु 180 वर्ष की आयु में हुई और उसके बेटे एसाव और याकूब उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। खैर, जैसा कि पता चलता है, पद 27 और 28 आपस में जुड़ी हुई नहीं है, वे केवल तथ्यों के दो अलग अलग कथन हैं। एक के बाद एक याकूब घर आया और कुछ समय बाद इसहाक की मृत्यु हो गई। थोड़े से बुनियादी गणित से हम पाते हैं कि इसहाक की मृत्यु यूसुफ के 12 साल तक लापता रहने के बाद हुई थी। मैं गणनाओं के माध्यम से नहीं जा रहा हूं, लेकिन यदि आप रुचि रखते हैं तो यहां दो मुख्य तत्व हैं। याकूब इसहाक से 60 वर्ष छोटा था, इसलिए जब इसहाक की मृत्यु 180 वर्ष की आयु में हुई तो याकूब की आयु 120 वर्ष रही होगी। जानने वाली दूसरी बात यह है कि याकूब की मृत्यु 147 वर्ष की आयु में हुई। मैं आपको यह पता लगाने दूंगा कि उचित समय रेखा तक कैसे पहुंच जाए, क्योंकि सभी आवश्यक जानकारी अगले कई पृष्ठों में है। पहला पद हमें कुछ महत्वपूर्ण बताता है। इसहाक ने आशीर्वाद में अपने जुड़वां बेटों को जो भाग्य दिया था वह सामने आ रहा था। याकूब अब वादा किए गए देश में रहता था और ऐसा उन्हें उसे छोड़ दिया है, उपजाऊ भूमि से दूर और नियमित वर्षा से दूर रह रहा है। लेकिन याकूब से पहले के समय से, उसके पिता इसहाक से भी पहले के समय से एक भविष्यवाणी आशीर्वाद का एक और हिस्सा होने वाला है। अब्राहमिक आशीर्वाद की कुछ समय के लिए इब्रानियों को एक विदेशी भूमि में अजनबी के रूप में रहना होगा और उन पर अत्याचार किया जाएगा। उत्पत्ति 15 का 13, और परमेश्वर ने अब्राम से कहा, निश्चित रूप से जान लो कि तुम्हारे वंशज एक ऐसे देश में अजनबी होंगे जो उनका नहीं है, जहां वे 400 साल तक गुलाम रहेंगे और उन पर अत्याचार किया जाएगा। 14, लेकिन मैं उस राष्ट्र का भी न्याय करूंगा जिसकी वे सेवा करेंगे, और उसके बाद वे बहुत सारी संपत्ति लेकर निकलेंगे। जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि वह भूमि जो उनकी नहीं है, जिस स्थान पर वे 400 वर्षों तक रहेंगे, वह मिस्र है। और अध्याय 37 में हम उस घटना के एक करवी सच्चाई बनने से बस कुछ वर्ष दूर हैं। आइए इस सप्ताह का समापन यहीं करें।